नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ 31 अगस्त को होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर रविंद्र जडेजा ने ऐसा खुलासा किया जो काफी हैरान करने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन भूलने वाला था। चर्चा थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए चुना जाएगा या नहीं। रविंद्र जडेजा से 30 अगस्त 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा, आईपीएल खत्म होने के बाद हमने सुना था कि रविंद्र जडेजा विश्व कप नहीं खेलेंगे, वह एक साल से चोटिल हैं, उसके बाद आप वापसी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत भी दिलाते हैं। अब आपके बारे में ऐसी बातें हो रही होती हैं, तब आप दबाव कैसे संभालते हैं, इस तरह की अफवाहों से कैसे निपटते हैं? इस सवाल पर रविंद्र जडेजा ने कहा, आपने तो बहुत छोटी बात कही है कि मैं विश्व कप में नहीं हूँ। बीच में तो खबर आई थी कि मैं मर गया हूँ, इससे बड़ी खबर तो हो ही नहीं सकती। रविंद्र जडेजा मई में 61 वर्षीय सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर राजेंद्र जडेजा के निधन की खबर का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, मुझे बस मैदान पर उतर कर प्रदर्शन करना है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और अपनी कमजोरियों में सुधार करता हूँ। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने इस सप्ताह न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ चर्चा के बाद एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय करियर को खत्म करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड कॉलिन डी ग्रैंडहोम को अपने केंद्रीय अनुबंध से मुक्त करने पर राजी हो गया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में 22 जुलाई 1986 को जन्मे कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने 11 फरवरी 2012 को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मुकाबले से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। ग्रैंडहोम उस पारी में अपना खाता नहीं खोल पाए थे। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जून 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला। ये एक टेस्ट मैच था। इसके दूसरी पारी में भी वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस तरह शून्य से शुरू हुआ उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटीय सफर शून्य से ही खत्म हुआ। भारत के स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी ली जी जिया पर सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन को जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को यहां पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। कभी नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और राफेल नडाल पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले अमेरिका के सैम क्वेरी ने यूएस ओपन के पहले दौर में हारने के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। कैलिफोर्निया के रहने वाले क्वेरी ने मंगलवार की रात को अपने करियर का आखिरी मैच बेलारूस के इलिया इवाशका से खेला, जिसमें उन्हें 4-6, 6-4, 7-6, 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। क्वेरी की अपने करियर में सर्वोच्च रैंकिंग 11 रही। उन्होंने 2017 में विंबलडन में तत्कालीन नंबर एक खिलाड़ी एंडी मरे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इससे एक साल पहले वह नंबर एक जोकोविच को हराकर इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 में विंबलडन और 2017 में यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। क्वेरी ने कहा था, मैंने ये सोचकर ही यूएस ओपन में भाग लिया था और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पिछले 6 सप्ताह काफी अच्छे रहे। दिग्गज खिलाड़ी वेनस विलियमसन को यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला एकल में मौजूदा चैंपियन एमआर राडुकानु भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई। जून में अपना 42वां जन्मदिन मनाने वाली वेनस को आर्थर एस स्टेडियम में अपनी छोटी बहन सेरेना की तरह दर्शकों का अपार समर्थन नहीं मिला और 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीधे सेटों में भी हार गयी। सेरेना जहां संन्यास लेने की बात कर चुकी हैं, वहीं वेनस ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। वीनस 2020 से पहले कभी यूएस ओपन के पहले दौर में बाहर नहीं हुई थी। उन्होंने पिछले साल इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। इस बीच राडुकानो पहले दौर में हारने वाली केवल तीसरी यूएस ओपन चैंपियन बन गई। उन्हें एलिजे कार्नेट ने 6-3, 6-3 से हराया। राडुकानो ने पिछले साल क्वालिफायर के रूप में यूएस ओपन में भाग लिया था और वह चैंपियन बनने में सफल रही थी, लेकिन इस बार कार्नेट के सामने उनकी एक नहीं चली। उत्तर प्रदेश में बरेली के एक शराब कारोबारी संयम जायसवाल को पाकिस्तानियों को चढ़ाने का प्लान भारी पड़ गया। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार कह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संयम जायसवाल ने एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुबई गए थे। उन्होंने अपने क्रिकेट नायकों की झलक पाने के लिए बरेली से यूएई तक का सफर तय किया। हालांकि वह देर से दुबई पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक संयम जायसवाल ने खचाखच भरे स्टेडियम में भारतीय टीम की जर्सी की तलाश की, लेकिन तब तक सभी बिक गई थी। पाकिस्तान की जर्सी बिक रही थी। तब सईम ने प्लान बनाया कि वह बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम की जर्सी खरीदेंगे और उसे पहनकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उनके ऐसा करने से पाकिस्तानी फैंस चिढ़ेंगे। हालांकि जब वह जर्सी खरीद रहे थे तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बात स्वदेश लौटने पर उनके लिए तूफान खड़ा कर देगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।